Why does that ever happen?
Just a minute, wait. It will happen.
ये बात समझे भाव फिर थोड़ा सा नीचे उतर आएंगे ये क्या भाव है अब बराबर में है अब ये गोपियों का सख्य भाव सखा लोग जब रुष्ट हो जाएंगे तो मनाएंगे किंतु पैरों पर नहीं गिरेंगे गले में लगा लेंगे किंतु गोपियां जब रुष्ट हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा कृष्ण के चरणों सिर में इतना प्रेम का आधिक्य प्रणव अपने आधिक्य जैसे तो भक्त निकट कर रहे थे दास थी के बेसि इतना प्रेम कृष्ण रस स्वरूप है और रसिक स्वरूप दोनों है केवल रस ही नहीं गोपियों के चरण में गिर करके अपने को छोटा नहीं समझते वो तो महिमा बढ़ जाते तो ऐसे भगवान इतने बड़े कृपाल भक्त क्या ऐसे वशीभूत हो जाते हैं जो रामचंद्र जी ने नारायण ने
गायें रह गई गोप गोपियां बच्चे जितने वृद्ध सवाल वृद्ध बनिता सभी लोग सब जिस समय पहुंच रहे हैं उस समय में कुंती जी पांचों पांडव भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि जितने दुर्योधन सब राजन्य वर्ग अपने स्त्रियों के साथ में बच्चों के साथ में कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए बड़े बड़े ऋषि लोग नाथ ऋषि व्यास अम्बल इत्यादि जितने ऋषि लोग हैं कभी हबी सब वशिष्ठ गौतम सब आए सब लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए तांता लगाए हुए विशेष करके ये कुंती जी उनकी बुआ जी है कृष्ण की और कृष्ण से और अर्जुन का बहुत ही प्रेम है पांचों पांडवों से ये लोग भी वहां पर आए हैं उनसे उस समय में बातचीत हो रही थी और उस समय में कृष्ण ने सुना ये मेरे पिताजी आ रहे हैं नंद बाबा आ रहे हैं मैया आ रही है और वहां की गोप गोपियां सभी आ रहे हैं बस एक सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया कितनी उनके पदार्थ प्रीति है ये मैया बाप और उनकी बुआ जी और प्रिय भक्त जो हैं द्रौपदी जी सबको छोड़ करके और मैया मैया कहते हुए रोते हुए हाथ भाग रखे यशोदा जी ने देखा जैसे ये दोनों बालक आ रहे हैं गाड़ी खड़ी कर दी और खड़ी करके सब लोग उतर आए गाड़ी में से कृष्ण एकदम सफा दौड़ते हुए कहां जाएंगे वो बेटा बेटा कह करके रो रही हैं और ये उनकी गोदी में चले गए और बैठे रोने लग गए मुख ढक दिया उनके अंचल से और मैया मैया कैसे जैसे शब्द प्रसूता गाय शब्द प्रसूता माने क्या अभी भी बच्चा पैदा उसकी माँ क्या करती है हुंकार भरती अभी कल परसों गया था ना तो नया बच्चा दे हम लोग गए थे हुंकार कर रहे चैन नहीं उसको ऐसे ही यशोदा मैया जी डकर डकर करके एकदम रोने लग गए नंद बाबा भी रोने लग गए बलदेव जी दौड़ करके पिताजी के गोदी में बैठ गए नंद बाबा को वो उनको सिर पर हाथ रख करके उभी रो रहे हैं बलदेव जी भी रो बलदेव जी किसके पुत्र हैं किसके पुत्र हैं रोहिणी मैया जी बाप कौन है नंद बाबा नहीं है कितने उन्हीं को बाप जानते हैं उनके पिताजी वसुदेव जी हैं किंतु उनको नहीं जानते उन्हीं को जानते हैं पिता के रूप में और पिता पिता कहकर को भी रोने लग गए पहले तो वो प्रणाम किया तो उनको गोदी में ले लिया और तो सारी सभा वहीं पर पहुंच गई जब वो खूब रोने लगी तो धीरे 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 शांत होकर के वहां पर रोहिणी रोहिणी मैया और देवकी भी आ गई रोहिणी जी ने कहा देवकी जी ने ये तो बेटे को फिर ले जाएगी हमको कभी कभी मैया ही नहीं कहता आज इसको देकर के जिसे जन्मा नहीं और इसको मैया कह रहा है और रो रहा है मैया मैया कह के, वो भी वैसे ही डकर रही है जैसे इसी का अपना बेटा हो, और हमको भी कुछ कुछ नहीं मिलता। तुमने देखा जो इस बार बड़ी मुश्किल से आया है, इस बार यदि लौट गया तो कभी नहीं आएगा। इसलिए कह रही हैं, यशोदा जी को सुना रही हैं और कृष्ण को भी, आप यशोदा जी आप बड़ी उदार हैं। कैसी उदार आप हैं, विश्व में आपके समान कोई उदार व्यक्ति नहीं देखा। हम लोगों ने देखा जी इस बेटे की रक्षा नहीं कर सकेंगे, इसे जन्म होते ही हमने गोकुल में भेज दिया, और गोकुल में भेजने से यशोदा जी ने इस पुत्र को, मेरे पुत्र को अपना पुत्र मान करके, जैसे आंख की पुतली को पपनिया रक्षा करती है ना, तो ऐसा फेंकने फेंकने का तरह आंख बंद हो जाएगी, चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अपने आप कोई भी चीज होगा ना झट बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से भीतर की आंख को जिस प्रकार से पपनिया रक्षा करती है, जो सोदा मैया उसे भी अधिक कोटि गुण अधिक प्राणों से भी अधिक उनको प्यार करती हैं और रक्षा करती हैं। इसलिए ये नहीं समझ सका जो मैया इसके मैया है, यथात्मा में यशोदा जी जैसा उदार और कोई नहीं। मैं इनका ऋण कभी नहीं चुका चुका। कहने का मतलब क्या है,
यशोदा जी तेरा बेटा कृष्ण को भी सुना रहे हैं,
ये मेरा बेटा है याद रखना,
यशोदा को भी सुना रही है कृष्ण को,
कृष्ण भी समझ रहे ये बेटा मेरा है। वो तो हमने उनको दे दिया था, ये तो दाई जैसी उनकी सेवा थी, ये समझ रही। प्रणी जी ने देखा जैसे ये सब मजाक किरकिरा कर देंगी, इनके भावों को समझ नहीं सकेंगे, इसलिए कहा आपको कुंती जी बुला रहे हैं, चलिए आप भी हम भी चल रही हूं, नंद बाबा भी चलें और हम लोग जाकर के उनसे बातचीत कर उनसे मिल लेते हैं। इसलिए रोहिणी जी इनको छल बल से वहां से लेकर के चली गई। यशोदा जी कृष्ण से बहुत मिली, पास में खड़ी हैं कौन गोपियां, गोप्य कृष्ण उपलब्ध चिराद अभिष्टम। अब तक तो 50 वर्ष किसी प्रकार से ब्रज में रह करके शोक में विरह में तड़फड़ा रही जीवन रखा, किंतु जितने ही कृष्ण के निकट आ रही है ना धड़फड़ी बढ़ रही है। कैसे कोई व्यक्ति बोझा लेकर के कहीं से चले, आप लोग तो जाने मैंने समझने गृहस्थ लोग, हम लोग या लोग गृहस्थी करने वाले बोझा लेकर के चल रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, एकदम थक से रहे हैं, जैसे जैसे घर आता जाएगा थकते जाएगा, और जब दरवाजा सामने आएगा तब उसको एकदम उठा करके फेंक दें, और 5 मिनट और यदि 2 मिनट और चलते तो ठीक जगह पर पहुंच जाता, किंतु वहां पर नहीं पहुंच सकता। ठीक ऐसे ही जो भी है, अब तक आई कृष्ण सामने है, बोल नहीं रही है, यशोदा जी से बातचीत कर रही है थोड़ी सी, और गोपियों का प्राण यहां तक आकर के यहां तक आया है, यदि 2 मिनट यदि रह जाए ना तो बस। यशोदा जी ने इस भाव को समझा, बलदेव जी थे, बलदेव जी का हाथ पकड़ा और उनको साथ लेकर निकल गई, इसलिए
मिलने के सुयोग कर दिए।
यशोदा जी बहुत बुद्धिमान है, उदार है, इसलिए वहां से अपने आप हट गई, बीच से रोड़ा हट गया, लेकर के चली गई। तो कृष्णम उपलब्ध चिराद अभिष्टम, कृष्ण ही उनके अभिष्ट है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। किंतु एक बात यहां है, कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के एक पैर भी कदम नहीं रखते कहीं, और यशोदा जी जाएंगे जब तो कृष्ण नहीं जाते, तो ये कृष्ण वहां पर गए तो वो कौन है, असल कृष्ण वृंदावन वाले तो वहीं पर छिप करके रह गए, द्वारका में उनका प्रकाश गया, उस तरह से वृंदावन को छोड़कर के राधा जी नहीं जा सकते, इसलिए वहां पर ये समझिए राधा जी का वो एक प्रकाश है, वो असल वो श्रीमती राधिका जी का जो भाव है वो वृंदावन में कभी नहीं छोड़ सकते, तभी ये भी जो है इनका एक प्रकाश है,
भूल नहीं है,
हाँ
भूल नहीं
है,
शरीर से वही है,
भाव से नहीं है। कृष्ण शरीर से तो द्वारका चले गए किंतु भावना से, भावना वाला जो यशोदा जी के पुत्र राधानाथ राधाकांत वो वृंदावन से नहीं जा सकते। क्यों? अब वहां जाकर के राधाकांत नहीं रह सकते, यशोदा मैया जी उनकी मैया नहीं रहेगी, सब बदल गया ना। उसी प्रकार से राधा जी सशरीर जाने पर भी राधा जी का भाव जो है
विश्वानंदिनी का भाव नहीं है,
वो वहां पर गए प्राण होठों तक आ गए हैं निकल, तुमसे कभी नहीं मिली, बहुत 50-60 वर्ष हो गया किरात भ्रष्टम। आखिर तो सब समय पलक गिरती है ना, राधा जी या गोपियां श्राप दे रही हैं ब्रह्मा को, इतना सुंदर रूप, इतना रूप में माधुरी, और हमें देखने के लिए ये दो आंख दिया, और आंख भी ऐसी निगोड़ी, निगोड़ी माने निगोड़ी माने योग्यता नहीं, जिसमें दो आंखें, उसमें पलक पलक बार बार गिरता है, और उसमें से आंसुओं की धाराएं आ रही है ना, जब वो पोछती है फिर आ जाते, इसलिए देख नहीं सकते, इतना प्रगाढ़ प्रेम है। मान ले कि तुम ये यदि सुनो जो ये वृंदावन चले गए हैं लौटेंगे नहीं, कैसी दशा होगी, और वहां जाने पर कभी जगत में ये तो जानते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, वहां पर बिछुड़न नहीं है, तो भी वहां पर एक ऐसा भाव है जहां प्रेम की अधिकता रहेगी, वहां पर अब छटपट छटपटा ब्रह्मा जी को साथ में ये आंसुओं की धारा आ रही, बार बार हटाती हैं और बार बार भी आंख खोलते हैं फिर गिर जाता है, ब्रह्मा जी को साप देने लगते हैं। ब्रह्मा जी योग्य सृष्टि नहीं जानता, यदि होता तो हम लोग कोटि कोटि ब्रह्मा को ऐसे बनाती जैसे ऊपर से नीचे तक आंखें कर देती, पलक नहीं रहता, आंसू भी नहीं जाती, और ऐसा कर करके गोपियां हृदय भी वृग भी आंखों के माध्यम से कृष्ण खड़े हैं, किंतु आंखों के माध्यम से कृष्ण को अपने भीतर में ले गई, और लेकर के आंगन से उनको एकदम भर करके पकड़ लिया। जो भी लोग कोटि कोटि वर्ष, लाख कोटि वर्ष तपस्या करके कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान भी नहीं कर सकते, और उस कृष्ण को एकदम आंखों के माध्यम से ले गए और लेकर के भीतर में बैठा करके उनको लिंगन पास में बद्ध कर दिया। नित्य जुजान जो सब समय भगवान से मिलने के लिए जो चेष्टा करते हैं योगी लोग, कौन योगी लोग, ब्रह्मा शंकर और सब बड़े बड़े चतुर्षण इत्यादि, हृदय नहीं पवित्र होता, इतना प्रेम नहीं है, यह कृष्ण बैठे और उनको अपने हृदय में ले जाकर परिवर्तन एकदम तन्मय हो गए। उसमें जैसे इनकी दशा से महाप्रभु जी वही सही तो प्राणनाथ का ही वो प्राणनाथ को पाए, किंतु तृप्ति नहीं हुई, ले तो गई, कौन कृष्ण को भीतर में ले गई, इस कृष्ण को नहीं जिसको देख रही हूं, यहां पर कुरुक्षेत्र में देखा कौन कृष्ण को, सत्यभामा रुक्मिणी के पति और अनिरुद्ध इत्यादि के पिता और पतिता, देवके और वसुदेव के पुत्र, भीष्म पितामह इत्यादि सबके जगत गुरु, उनको देखा, उनको नहीं ले गई, उनको यहां से हटा दिया ये सब, और उनको वनमाला पहना दी, अरसे लगा दिए, हाथ में बांसुरी दे दी, फूल फूलों से उनको सुसज्जित कर दिया, और तब फिर वो उस बाल गोपाल को सही तो प्राण महाप्रभु इसी भावना से गए। उस समय में कृष्ण कुछ लज्जित हुए और बोले हमने कुछ अपराध किया, आप लोगों के प्रेम की उचित ऋण मैं नहीं चुका सका। मैं यदि कोटि कोटि वर्षों तक भी देवताओं की अमर आयु पाकर कभी चाहूं तो तुम्हारा ऋण मैं उतार, तो तुम लोग हमारे ऊपर में असंतुष्ट हो। गोपियों से पूछा, असंतुष्ट हो? देखो मैं तो भगवान हूं, ब्रह्म हूं, मैं ऐसी कोई जगह जहां है जहां मैं नहीं, मैं तो सर्वत्र हूं। एक पानी का घड़ा होता है ना, मिट्टी का, उसमें मिट्टी का कहीं अभाव है? ये दर्शन थोड़ा सा है, दर्शन साफ है, मिट्टी है ना, मिट्टी का घड़ा बना, घड़े में ऐसा कोई, घड़े में कोई जगह है जहां पर मिट्टी नहीं है? बतलाओ तो नहीं, सर्वत्र मिट्टी से ही घड़ा बना, इसलिए मिट्टी में सर्वत्र ही घड़ा है। उसी प्रकार से मेरे द्वारा सृष्टि जगत की हुई, तुम्हारे शरीर की भी हुई, तो मेरा अभाव कहां है? मैं तो सर्वत्र हूं। इसलिए तुम लोग ध्यान करो और ध्यान में तुम हमको पा जाए। ये उत्तर सुनकर के गोपियों का एकदम क्रोध हो गया,
उनकी हो धोखा नहीं इतना बोलने की।
आहुश्चते नलिन नाम पदार बिंदम योगैश्वरी विधि विचिंत मगाध बोधई संसार को पतितो परणावलंबम गेहम दुषाम मनुष्योद्यात सदा। कृष्ण को कह रहे हैं कि हे जगत के गुरु, आप जगत के गुरु, ऐसा ज्ञान हमको पहले उद्धव के द्वारा दिया और बलदेव जी भी आए थे ब्रज में तो उनके द्वारा दिया, ऐसे ज्ञान को हम लोग सामने में समर्थ नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों से आदमी तप जाता है, झुलस जाता है, आपके इस ज्ञान से हम लोग झुलस गए, इसलिए आपको दूर से प्रणाम। आपको किसको क्या शिक्षा देते हैं? आहुष्यते मनि ननाभ पदारविंद योगैश्वरी रपि
विचिंत
अगाध, अगाध बोध जो है उनके लिए ये ज्ञान चाहिए। हम तो गांव की वृंदावन की ग्वारी लड़कियां हैं, हम लोग ये सब दर्शन शास्त्र क्या समझेंगे? हमारे बुद्धि से अतीत ये ज्ञान ब्रह्मा शंकर और उन लोगों को दीजिए। तो ऐसा देखिए विचार करके, जिसके लिए ये चाहते हैं, संसार में आदमी क्या चाहता है? सुख, और एक चाहता है जो वो सुख हो बिना दुख का, मिश्रण नहीं, समझ रही है? स्वाभाविक रूप में सुख चाहेंगे, किंतु जगत का जो सुख है कैसा है? यदि सुख भी एक तो नहीं है, रियल सुख नहीं, यदि है भी मान लिया कि थोड़ा सा, तो उसमें दुख मिश्रण, और है कितने दिन के लिए? क्षण स्थायी। ये युवावस्था कितने दिन की है? थोड़े दिन नहीं, शरीर ऐसा स्वस्थ नहीं रहेगा, आयु बढ़ती जाएगी, शरीर घटता जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटने लगेगा, इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगे। ये सुख का समस्त वैभव आने पर भी जब ये एकदम वृद्ध हो जाए आदमी, तो सुख अनुभूति होगी? नहीं होगी, कोई उसकी बात ही नहीं मानेगा। और देखेगा जी हमारा ये नाती, हमारा ये बेटा, हमारी संपत्ति लेकर के उसको बढ़ाया या जैसे किया, किंतु है तो मूल में नहीं, और ये बेटा भी और ये नाती भी तो हमारे ही हैं, कतई चुपचाप बैठे रही है, उसमें अच्छा लगेगा उनको?
सठिया गए
घर में माल पुआ राबड़ी और संदेश और क्या क्या बना हुआ है, किंतु शरीर अस्वस्थ और पेट गड़बड़ी है, कुछ ले सकते हैं? कुछ सरल उनके लिए एक, वो भी तेल भी नहीं चाहिए, खूब सरल सा, वो भी नहीं हजम होता, कहीं जा नहीं सकते, उसमें अच्छा लगेगा ये संसार? तो ये जगत में एक तो ये दुख है, ये सुख है, ये एक अफ्रंत नहीं है, अफ्रंत माने नित्य सदा स्थिर नहीं रहेगा, अभी है क्षण में पलक, क्षण में धूप पलक में छाया, देखो तो ईश्वर की माया। अभी सुख कभी दुख, कभी को कभी छाया, कभी बादल, कभी प्रकाश, कोई ठीक नहीं। तो ये जब ये सुख भी है तो नित्य नहीं है, समाप्त हो जाता है, और यदि समाप्त भी हो जाता है थोड़े देर के लिए भी है तो वो दुख मिश्रित। संसार में धन कमाने के लिए कितना कष्ट, और यदि धन आ गया तो रक्षा करने के लिए कितना कष्ट, और यदि वो चला गया तो
आने के बाद जाने का भय,
और उसके बाद में इस धन से संपत्ति से हम जो संसार ये किया ये भी अचल नहीं, फिर एक दिन जाएगा। इसलिए संसार में दुख दुख ही है, और जो सुख है दुख का रूपांतर है। रूपांतर समझती है
नहीं,
दुख ही बदल करके कुछ सुख जैसा दिखता है, जैसे सैक्रीन कोई चीज होती है वो ऐसे खाओ तो कड़ी लगेगी, और पानी में अधिक घोल करके लेने से थोड़ी सी
मीठ लगेगी,
किंतु उस मिठास में भी कड़वी का भाव जरूर रहेगा, वो दूर नहीं होगा। इसी तरह से ये संसार का जितना सुख है किंतु उसके मूल में दुखी ही है, वो घना दुख है, वो जो सुख के रूप में प्रतीत होता है। सुकर को बिस्टा खाने में और गंदी चीजों में रहने में आनंद आता है, उसको यहां पर बैठा हो तो बैठेगी नहीं बैठेगी, उसको वो दुखी सुख संसार। ऐसे ही हम लोगों को भी संसार इस जगत में यथार्थ में सुख नहीं है। अब थोड़ा सा ये विचार कर, सुख किसको कहते हैं और आनंद किसको कहते हैं, प्रीति किसको कहते हैं। सुख होता है जब मन में खूब आनंद होता है किसी चीज को पाने में, उल्लास, जो अपने शरीर के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, अपने मन के लिए उल्लासदायक हो उसको कहते हैं सुख, किंतु है अपने लिए। और प्रीति जो होती है वो किसी प्रकृति होती है, सुख में किसी दूसरे की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना, मैं उसको भोग करूंगा। अब प्रीति जो होती है तो ये प्रीति होने करने वाला व्यक्ति है, किसी के प्रति करता है, जैसे कृष्ण को मान लो प्रीति के विषय है, मैं उनको प्रीति कर रहा, यशोदा जी गोपियां उनको प्रीति कर रही हैं। कृष्ण जब सुखी होगा ना हंसेगा तो यशोदा मैया क्या करेंगी,
उल्लास हो रहा।
और किसी कारण से यदि रोने लगा अथवा वृक्ष उनके ऊपर में गिर गया है अथवा पुतना की छाती पर उसका स्तन पान कर रहा है, उसको विष मिलाकर के पिला रही है और फिर लेकर के उड़ गई, तब उस समय क्या हुआ, कृष्ण के लिए दुखी हो गई, बहुत घबरा गई। तो इस तरह से देखते हैं कि ये प्रीति होती है, कृष्ण को सुखी देख करके जो हम सुखी होते हैं इसको कहते हैं प्रीति, और सुख होता है अपने लिए। ये जो सुख होता है ये दुख मिला हुआ होता है
ये अपने लिए होता
है, और प्रीति जो होती है वो कैसे होती है, कृष्ण के लिए प्रीति, कृष्ण को देख करके सुखी, और भक्तों को जो आनंद होता है इसमें अपने आप सुख भी है प्रीति भी है, दोनों चीजें हैं। इसलिए इस प्रीति को ही भक्ति कहा गया, पहली स्थिति जिसके अंदर में ये प्रीति है उसको नित्य सुख मिल सकता है,
दुख रहित सुख,
और इस जगत वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति का साधन भजन करके हमको वहां जाना है जहां पर कृष्ण से प्रीति हो निरंतर, न कृष्ण मरेंगे न मैं मरूंगा, उनका कोई भी नहीं मरता है, नित्य आनंद, और उसमें कृष्ण को सब समय सुखी करेंगे, हम भी सुखी रहेंगे, ये भक्ति का मूल उद्देश्य है। तो गोपियां कह रही हैं आप हमें कह रहे हैं जैसे तुम निराकार का ध्यान करो, आहुष्चते ननिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वरे विधि विचिंत मगाध भूत। देखिए ये अगाध बोध वाले जो ब्रह्मा शंकर सनक सनंदन सनातन हैं, लाखों कोटि वर्ष की समाधि लगा देते हैं और उसमें कभी कभी किंचित आपके चरण जो हैं अत्यंत सुंदर कमल जैसे, वो कभी कभी हो सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते, बड़ा मुश्किल। और हम बचपन से उन चरणों को जैसे नंद यशोदा जी अपनी गोदी में रखते हैं, गोपियां अपने हृदय में रखती हैं साक्षात रूप में, उनसे मिलती हैं जुलती हैं खिलाती हैं खिलती हैं साक्षात रूप में, ये जोगों के लिए कभी संभव नहीं है। तो ये जोगी बड़े हुए नहीं, वो बड़ी हुई, कृष्ण जिनके गोदी में चढ़ने के लिए ललकते हैं और ब्रह्मा इत्यादि सब ध्यान में उनके चरण कमल के केवल ये आभा देखते हैं और यशोदा जी गोदी, और वो गोपियां उनके चरणों में अपने सिर को नवा करके भिक्षा मांगते हैं, जो प्रसन्न हो जाओ। कहां बड़ी कहते, अब हम ये चाहती हैं आपको मैं भूल जाऊं, भूल नहीं पाती, हमारे मन में सब समय आप ही उदित होते रहते हैं। हम घर में रहती हैं, घर में प्रत्येक जगह आपके चरणों की धूली पड़ी हुई है, वो मुझे हमें सब समय स्मरण करा देती है। आपको भूलने के लिए जमुना के तरफ नहीं जाती है, वहां देखती है क्या, वो घाट कहता है कृष्ण कृष्ण और उसको देख करके हम रोती हैं, सब लीलाएं स्फूर्ति होती है। यहीं पर हमारे वस्त्र को चुराया, यहीं पर हम लोगों से खेला, यहीं पर दल के लिए की, ऐसा कोई पेड़ नहीं जहां पर उनकी लीलाएं नहीं हुई हमारे साथ में, ऐसा कोई कुंड नहीं है जहां पर उनकी लीलाएं नहीं हुई, वो सभी पुकार पुकार करके कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वहां से हम गोवर्धन को चली जाती है उनको भूलने के लिए। गोवर्धन में गई उनको भूलने के लिए, क्या देखा, अरे यहीं पर तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, यहीं पर कुंजों में हमारे साथ में राधा कुंड श्याम कुंड में कितनी लीलाएं हैं, और ग्रह में छटपट छटपट करते हैं, हम चाहते हैं कि आपको भूल जाए। और वो लोग कहते हैं क्या, हमारे मन में आ जाए, और ऐसे जो हम उनको भूल जाना चाहती हैं और भूल नहीं पाती, उसको आप जो की शिक्षा दे रहे हैं जैसे उनका ध्यान करो, इनका चौबीसों घंटा में चौबीसों घंटा ध्यान बना रहा है और वो लोगों को भी प्रेम आते हैं, ऐसे हमको आ पा रहे। संसार को पतितो तरणावलंबम, ओहो संसार के लोगों के लिए जो संसार की कूप में गिरे हुए हैं, कूप किसको कहते हैं,
कुआ,
पानी क्या है वहां रस जैसा, संसार का गृह का सुख ही कभी सुख भी जाएगा, पानी तो एकदम नीचे तक जरूरी नहीं है जैसे वो सब समय रहेगा, सुख ही सकता है। तो संसार कुप में पड़े हुए जीवों के लिए जो भगवान को भूल करके इस जगत को ही सत्य मान लिया और इसमें सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं, वो कुएं में गिरे हुए हैं। कैसे कुएं गिरे हुए हैं, जैसे कोई अंधा कुआं होता है जिसमें पानी नहीं है और ऊपर के ईंट घाट सब गिर गए हैं और पानी भी सूख गया, उसमें बड़े बड़े सांप काले काले मच्छर भरे हुए हैं और टहनियां कुछ उगाई हैं पीपल इत्यादि की छोटी छोटी डाले, और एक राहगीर जा रहा था किसी बाग में आक्रमण किया प्राण बचाने के लिए, वो ऊपर में देखा जो बड़े बड़े मोटे पेड़ हैं, जल्दी से उसने दो डाल पकड़ करके कुएं में जोड़ दिया, उसके नीचे देखा जो सांप ऐसा काला सा ऐसे फंक करके देख रहा है, जब ही नीचे गया बस काटेगा मरेगा, ऊपर गया बस
भाग खा जाएगा,
और जो दो डाले पकड़ करके झूला हुआ है उसको एक सादा चूहा एक काला चूहा काटने लग गया, खुद देखने लग गया, और थोड़ी देर में ही वो यदि नहीं छोड़ेगा तो भी वो डाल कटेगी और गिरेगा, और ऊपर में एक टहनी पर थोड़ी सी मधु मधुमक्खियों ने छत्ता लगा दिया और उसे मधु तक तप करके गिर रहा है। कैसे सोने जैसी मधु की बूंदें, कितनी मधु उसने जीत बढ़ाई और एक आहा कतो कितना मधु, ये देह का सुख है।
इतने डेंजर में इतना सुख,
ऐसे जब ये संसार कूप है तो कूप पतितो तरणावलंबम, ऐसे गिरे हुए जीवों का आपके चरण कमल कैसे हैं। यदि कोई ध्यान करता है, स्मरण करता है, वो संसार कूप से झट निकल करके उतर आ सकता, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपका चरण ही उससे निकलने का एकमात्र मार्ग है। तो हम लोग भी ऐसे ही संसार में गिरे हुए हैं। आपके चरण कमल का ध्यान करने से होता है, और वैसे ही आप हम समझते हैं हम इसी संसार कूप में गिरी हुई है। हाँ, बात ठीक कर रहे हैं, कृष्ण को उलाना दे रहे हैं। संसार कूप हमारा क्या है, बचपन से आपके अतिरिक्त तो कुछ नहीं समझा, खेल कूद आपके साथ में, रास विहार इत्यादि जो कुछ हुआ आपके साथ में, हमारा संसार तो कोई घर बार स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ हमने छोड़ दिया, लोक लज्जा सब कुछ छोड़ दिया, बस आप ही हमारा संसार है और तो कोई है नहीं, इसी संसार में पड़े हैं। और दुख क्या है, विरह, विरह माने मिलना नहीं, ये हमारा दुख है। उस जल में, गरीब जल में पड़ी हुई है, इसे यदि आप हमें बचाना चाहते हैं तो एक बात करना पड़ेगा, आपके चरण कमल के ही सहारे से हम लोग बच सकते हैं। किंतु ये चरण कमल कहां, आने हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी जानी, ठीक से समझो, आने हृदय मन, हम लोगों का जो हृदय है और मन एक है। मन क्या करता है,
चिंता
करता है, विचार करता है, ये अच्छा है ये बुरा है, अथवा कभी कभी ये ना विचार करके बस अच्छा सुंदर देखा, भीतर से सुंदर है कि नहीं ये नहीं देखा, वो तो बुद्धि विवेचना करेगी ये अच्छा है कि बुरा है क्या है। मन तो देखता ही लपक जाता है, उसमें सट जाता है, जैसे गूंज से चिपका देते हैं उन विषयों में, चिपक बुरा है कि अच्छा है ये सब विचार नहीं करता। किंतु मेरा मन क्या है, मोर मन
वृंदावन,
हमारा मन और हृदय एक है। हृदय किसको कहते हैं, हृदय कहते हैं जहां पर कहीं कृष्ण की भक्ति विराजमान होती है,
प्रेम
प्रेम रहता है। यहां पर मस्तिष्क में बुद्धि, विचार, दर्शन, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, और यहां पर आता है प्रेम, प्रेम का हृदय स्थान है। तो हमारे हृदय ही मन ही हृदय है, हम लोग शुष्क ज्ञान इत्यादि नहीं चाहते, प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय है। इसलिए आप एक और विचार कीजिए, मोर मन वृंदावन, मेरा मन क्या है, वृंदावन और मेरा मन एक है। जैसे योगों के हृदय में, मन में आप अपने चरण कमल को उदित करते हैं और उनका भाव व्याधि दूर हो जाता है, ऐसे हमारा जो बिना रूपी जो सागर है उसमें जो डूबी हुई है, जब मेरा मन तो वृंदावन, इसलिए वृंदावन में आपने साक्षात चरणों को उदित करा था, तो वृंदावन में हमारे साथ में चले और वहां पर हम आपके चरणों की सेवा कर सकें, तब हम लोग सुखी हो सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं। यहां पर तो मैं वही हूं, आप वही नहीं है, यहां पर 16,108 रानियां, माता पिता, हाथी, घोड़े, सैन्य सामंत, सेनापति इत्यादि, इस भीड़ में हमारा प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम कैसा होना चाहिए, कितना मिनट हुआ,
50 मिनट
हो गया, 2 मिनट में 50 मिनट निकल गए। और कह रही है देखो वृंदावन आप चलिए, आप वही हैं, मैं वही हूं, और महाप्रभु उसी समय में रथ यात्रा में एक श्लोक पाठ किया, मैं वही हूं प्रेमी, नहीं प्रेमिका, नायिका, और कृष्ण वही वो है प्रेमी या नायक, दोनों में प्रेम भी है, किंतु मेरा मन यहां नहीं लगता या अब वही आज हमारा विवाह हो गया है, अब हम लोग पति और पत्नी के रूप में यहां पर मिले हैं। काव्य प्रकाश का ये श्लोक है। हमें उस चीज दिन की याद आती है जब हमारी शादियां नहीं हुई थी और उस समय में बेत के बन के पास ही में एक कदम का बड़ा भारी पेड़ था, बगीचा, उसमें सुंदर मधुर सुगंध आ रही और उसमें एक नदी है, रेवा नदी, रेवा तट,
रेवा तट,
और उसमें रेवा नदी के तट पर सुंदर निर्जन उपवन में एक कुंज में हम लोग मिले। उस समय में हम लोगों का प्रेम एकदम निश्चल था, बदा हुआ नहीं। उसमें हम लोगों का जो मिलन और स्वच्छंद गति से प्रेम का आदान प्रदान जो था, यहां पर संभव हो सकता है, वही आप हैं वही मैं हूं, किंतु यहां हाथी घोड़े और ये सब ये संभव। उसी को रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के भाव को दूसरा कोई नहीं समझा, एक राय स्वरूप नाम और दूसरा नहीं, समझ रही है कुछ कुछ। तो कहेंगे से जब ही जाना है तो वृंदावन में हमको उनको आपको चलना पड़ेगा, वही आप कृष्ण हैं मैं वही हूं, यहां पर आपकी शादी हो चुकी है और हजारों स्त्रियां हैं, बलदेव जी हैं, सुभद्रा जी हैं और कौन कौन यहाँ पर हाथी घोड़े ये सब कितने मिलने वाले भीष्म पितामह इत्यादि हैं, यहाँ पर हम लोगों का मिलन हो सकता है। सब देखा बस वही, अधिक बातें नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप उसी वृंदावन में से ही तो प्राणनाथ पाई लू, अब वही आपको हम लोग लेकर के चलना चाहते हैं। भक्त ऐसे ही भगवान को छोड़ करके लाखों जन्मों से छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है, कभी देवता कभी राजा कभी प्रजा कभी बैल गोड़ी, पूरा शिला योनि में भ्रमण करता हुआ, कभी सुखी कभी दुखी, कभी देव कभी दैत्य, कभी राजा कखनो प्रजा, ए रूप संसार भ्रमित कोनो जीव साधु गुरु प्रसाद पाए भक्ति लगा। कोटि कोटि जन्मों के बाद में साधु गुरु जब मिलते हैं निस्वार्थ प्रेम से, उसके अंदर में हृदय में थोड़ी सी खाद और पानी डाल करके सरस कर देते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, किस चीज का, प्रेम का बीज। समझ में, हम उस समय नहीं जानते थे या इस समय नहीं समझ रहे, किंतु किस रूप में वो डालते हैं, ये बीज क्या है, ये श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा के रूप में पीछे पैदा होगी,
अभी तो बीज है।
बीज क्या चीज है, बीज में यह नहीं देखा जाएगा जो पेड़ है पौधा है फूल है फल है पत्ते हैं, ये सब नहीं दिखाई पड़ता, अव्यक्त अवस्था होती है वहां पर, केवल एक पोटेंशी रहती है, किंतु है क्या, कृष्ण सेवा की वासना रूपी बीज उसमें डालते, इसी प्रकार से सुख दिखा दे। अच्छा देखो तो ये ठाकुर जी की सेवा करो, ये करो, चलो ठाकुर जी का दर्शन कराए, ठाकुर जी के दर्शन करने से नहीं सेवा करने से होगी, ये कृष्ण के प्रति सेवा की वासना उसमें जो डालते हैं ये है बीज, यही बढ़ करके पहले श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम और उसके बाद में स्नेह मान इत्यादि बढ़ता है। ये जो गुरु जी ने या वैष्णवों ने संतों ने जो कृष्ण सेवा की वासना दी है, इसमें पानी देना चाहिए, खाद भी डालना होगा, तब ये बढ़ेगी। अभी अनर्थ भरे पड़े हैं, अनर्थ माने क्या, अपने सुख की वासना, अपनी प्रतिष्ठा, सबसे अधिक प्रतिष्ठा, ये सब अनर्थ है और अधिक है नम अपराध, वैष्णव के अपराध, गुरु के प्रति अपराध, कभी कभी जानबूझ करके और कभी कभी अनजान में ही हो जाता है, समझ नहीं पा। ये सब दूर होने पर ये जो कृष्ण सेवा करने की जो वासना है, समझ रही है, सेवा करने की वासना, जैसे आपकी सास ने या ससुर ने या इन्होंने का, जैसे यहां पर वृंदावन के लिए एक ठाकुर जी का पोशाक बनाना, ये सेवा अपने लिए तो नहीं कर देंगे, ये सेवा की बात। फूल लगाया ठाकुर जी को जा रहा, ऐसी सेवा की वासना करते हैं यहां पर दिन, यही वासना बढ़ते बढ़ते कहां ले जाएगी, उसके स्वरूप को वृंदावन में ले जाकर के कृष्ण की सेवा डायरेक्ट मिला, ऐसी ये वासना है। तो अभी वासना हमारी अभी कोमल है, नष्ट भी हो सकती है दो संग में, यदि ऐसा पानी न मिले हरि कथा न मिले तो क्या होगा, धीरे 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 ये जो बड़ी हुई है कृष्ण को सेवा करेंगे, ये वासना जो है ये सब धीरे धीरे तब अपने भोग की याद आएगी, कर्म करेंगे दूसरों को खुश करेंगे, बस इसी में चला जाएगा कृष्ण भक्त जो थी। जैसे बचपन में तुम्हें को याद है मास्टर साहब आते थे तो वो बरहा पीड़म नट बरबू कराते थे ना, हम लोग जाते थे ये बीज पड़ा, ये जहां जहां गए तुम लोगों को ले गए, इन्हीं की वजह से विशेष करके सब लोगों से परिचय। तो कृष्ण की सेवा करने की एक वासना पैदा, यही मान लिया कि विवाह शादी हो गया और तुम लोगों का परिवार ऐसा नहीं रहा, और वो लोग यदि गलत दानव हुए तो कहेंगे ये समझ करो हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, प्याज लहसुन ला करके ला दिया, तो क्या होगा धीरे धीरे वासना वो खत्म भी हो सकती, किंतु सौभाग्य जीव जीव यदि रहे तो कृष्ण उसकी व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करेंगे ये वासना और बढ़ती हुई चाहिए। इस वासना को अपनी संपत्ति बना करके रखना हृदय में छिपा करके, और इसको बढ़ाने की चेष्टा करें जहां भी हो, ये वासना तो यही तक नहीं सीमित रहे, कृष्ण के चरणों की सेवा, चरणों की सेवा हनुमान जी करते हैं ना सब समय सदरा हो गया सदरा हो गई इसको संभाल करके रखेंगे तो सेवा की बात ये बढ़नी चाहिए, संसार तो जाएगा ही कुछ दिनों के बाद में, ये रहेगा नहीं, इसलिए इस संपत्ति को दुर्लभ मान करके किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखना और इसको बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, भरसा जी। हे कृष्णा हे कृष्णा, ये पानी देना है उसमें, ये जो हरि कथा है पानी भी है और फल भी है, भक्ति ऐसी से साधन भी है, सिद्धों के लिए ये साध्य है, हम लोगों के लिए साधन है, इसी माध्यम से चलेंगे और जब उन्नत हो जाएंगे ये हरि कथा ही उसमें प्राण होकर के कृष्ण स्वरूप बन जाएगा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हमने जैसे कहा था ऐसा निशंस बात, ऐसा कठोर वाक्य आप तो नहीं कहना चाहिए, तुम लौट जाओ, कहा हम अपने सब चीजों को गृह को पुत्र पति सबको छोड़ करके देह जाएगी आपके यहां चलूंगी, वैसे ये भी कह रहे हैं बल बल विभो हे विभो विभो, यहां पर ऐश्वर्यवाचक है, इनमें इनमें जो विधि भाव जो ऐश्वर्य और माधुर्य, बिना ऐश्वर्य हुए सिवा बुद्धि नहीं होगी, सिवा बुद्धि किसके लिए होगी, मेरे सब प्रकार से पूजनीय और योग्य है। इनमें ईशिता का अभाव ऐश्वर्य है। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक सेवा की भावना नहीं होगी। इसलिए ऐश्वर्य से सेवा की बुद्धि होती है और माधुर्य से होता है अनुकूल्य भाव। अनुकूल्य भाव माने क्या है? अनुकूल्य भाव माने होता है इनकी प्रीति की भाव से सेवा करने की भावना। प्रीति सेवा एक चीज है, प्रीति एक चीज है। यदि सेवा हो रही है और अनुकूल भाव नहीं है तो क्या होगा? भक्ति होगी? नहीं होगी। नहीं समझ में आता। यदि कोई सेवा कर रहा है, सेवा कहते हैं किसी को, किसी से यदि कोई प्रसन्न हो जाता है उस क्रिया का नाम सेवा है। चारु मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है और कृष्ण को आनंद हो रहा है, ये तो कृष्ण की सेवा हो गई, किंतु प्रतिकूल होने से इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये सेवा प्रतिकूल रहने से, अर्थात सेवा किसको कहते हैं? कायिकी, वाचिकी और मानसिक क्रिया का नाम सेवा है। क्रिया है मन से, तन से, वचन से। जब किसी के प्रति कोई क्रिया होती है तो ये चेष्टा हुई। ये तीनों चेष्टाएं होने पर भी यदि कृष्ण को रुचिकर नहीं है तो भी जो कर रहा है उसके अंदर में प्रतिकूल भाव है, अतः कृष्ण को मारने के लिए। इसलिए चारण मुष्टिक इत्यादि का यह जो कायिकी, वाचिकी और मानसिक चेष्टा है, सेवा तो हो गई किंतु प्रतिकूल भाव होने की वजह से यह भक्ति नहीं कही जाती। और ऊपर से देखने वाली क्रियाएं यदि प्रतिकूल से भी लगती हैं किंतु जो कर रहा है उसके अंदर में ये भावना हो इससे कृष्ण को सुख हो। सुदामा जी कृष्ण से लड़े और सुदामा जी ने आज कृष्ण को बांह में लगाकर नीचे गिरा दिया और उसके पीठ पर चढ़ करके यहां धूलि लगा करके ऐसे ऐसे रगड़ने बोले जी अब बेटा कहां जाएगा बतलाओ। और कहा जी अब तुमको हमारी पारी देनी पड़ेगी, जैसे हम तुमको वहां तक ले गए थे अब तुम हमको अपने कंधे पर बैठा करके ले जाओ। और उसके कंधे पर बैठ करके दुल-दुल करते हुए घोड़ा जैसा उनको, ये देखने में मालूम पड़ता है ये कृष्ण से ही सेवा ले रहे हैं किंतु नहीं, इसी से कृष्ण की प्रसन्नता। यशोदा मैया उनको बांध रही हैं, रुला रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं, स्तन का स्तन से मुख छुड़ा दिया और दूध को बचाने के लिए गई। तो इसमें भक्ति जैसी सेवा वृत्ति नहीं मालूम होती है, जो इनकी कायिकी, वाचिकी, मानसिक सेवा दूध पर है कृष्ण से अधिक। तो भी चुके कृष्ण हमारे दूध से नहीं पालन पोषण उसका होगा, वो होगा किससे? उस गुरु दूध। इसलिए कृष्ण से भी अधिक प्रीति उनके वस्तुओं पर होता है, ये भी प्रतिकारिक लक्षण। इसलिए
ये तो प्रतिकूल अनुकूल ना कृष्ण, तो ये तो अनुशीलन, ये जो
अनुशीलन तो हुआ
थे अच्छा भालो मैंने चालू मुस्टिक थे भालो इतना है
चालू मुस्टिक थे भालो ना चालू मुस्टिक एकेबारे की अनुकूल भाव कार मध्य रेशी, अनुकूल भाव किसमें अधिक है? यशोदा जी में है न सखाओं में है न गोपियों में है, किसमें अनुकूल भाव अधिक है? ये दिखला रहे बीज पत्नी में है न उनमें है। इसलिए यहाँ ऐश्वर्य रहेगा किंतु जो बलवान व्यक्ति होता है अपने अधीन व्यक्ति को अपने अधीन रखता है ना? वैसे माधुर्य जो है वो बलवान है, उसमें कभी कभी ऐश्वर्य आ सकता है किंतु माधुर्य को ढक नहीं सकता। ऐश्वर्य मथुरा या द्वारका में भी है, वो माधुर्य को ढकेगा नहीं, वहां पर अपने आप माधुर्य कम प्रकाशित है। इसलिए मां विभो मां एवं विभो निशंसम पुरुषम निगमम न स पुनरावर्तते इति देववाक्यम। यदि कृष्ण को एक आदमी पा लेता है, जब गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस भगवान को या भगवत धाम को प्राप्त करके कोई वहां से लौटता नहीं है, उसको भगवान का परम धाम है। यदि कृष्ण को कोई पा लिया तो वहां से फिर लौटेगा नहीं। ये कहें ये वेद की जो बात है निगमम, आप स्मरण कीजिए। तो क्यों हम क्यों स्मरण करें? अरे निगम तो आपका श्वास है, तो श्वास में उस व्यक्ति में कोई अंतर तो है नहीं, तो वेद भी तो आप ही हैं। इसलिए वेद की जो बातें हैं सब आप ही की बात है। इसलिए यदि उनके पास में कोई जाकर के नहीं लौटता है तो हम साक्षात रूप में आपके पास में है तो हम कैसे लौट करके जाएं? यदि जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बातें व्यभिचारिणी हो गई, आपकी बातें ठीक नहीं है यदि हम लौट कर। इसलिए सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादम, आपके चरण में हम आई हैं और फिर हम लौट जाएं अपने घरों में, यहां पर आग जल रही है, ये तो आपकी बात के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए सत्यम कुरुष्व, आप सत्य कीजिए। जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, गीता भी उपनिषद है इसलिए ये भी श्रुति है। गीता में भी कहते हैं जो लोग जैसा हमारा भजन करते हैं हम भी उसको उसी के अनुरूप में उतना ही कम या अधिक हम उसका भी भजन करते हैं। और आप समझ में, यदि कोई एक पैसा एनर्जी दे करके भगवान का भजन करे तो भगवान तौल करके उसी के अनुरूप उसको भी वो चीज देंगे। ये ऐसा नहीं हम भजन तो करते नहीं है और सब दे देंगे, ऐसा नहीं। जो जैसा हमारा प्रतिभाव है, ये जो प्रतिभाव से कर रही है, जो प्रियतम भाव से कर रही है, पुत्र भाव से कर रहा है, कोई सखा भाव से कर रहा है, कोई इनमें से कुछ नहीं होकर के तटस्थ भाव से ब्रह्म भाव जान करके कृष्ण ब्रह्म है एक रूप से कर रहा है, कोई स्वर्ग के लिए कोई संसारिक सुख के लिए उनसे कर रहा है, तो कृष्ण उनको वो सब चीजें दे देंगे। तो हम यहां पर आए हैं किस लिए? आपकी चरणों की सेवा करने के लिए, जब ये पत्नियां कह रही हैं। तो जब हम आए हैं तो आपको हमारे अनुरूप हमसे प्रेम करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो ये वेद दूर बात हो जाती है, और वेद तो आप ही हैं इसलिए आपकी बातें गलत हो जाएंगी। निगम रूपम सो वाक्यान सत्यम कुरुस्व, इनकी बातों को आप सत्य कीजिए। भवतु तम मनु, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है? भवति न विप्र जात्यभिमानु विस्तृत तत्त्वमा, रे आप लोग तो ब्राह्मण पत्नियां है ना, ब्राह्मण की पत्नी है, जाति में ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण में देव हूं, इसलिए आप यदि उस रूप में आती हैं हमारे पास में ब्राह्मणी का अभिमान लेकर के, तब तो आप लोग मन ही से हमारा भजन कीजिए और घर में लौट गए। गोपी अभिमान से यदि आती तब तो हम लोग समझ आती होते। इसलिए प्रीति बहुत कुछ निर्भर करती है संबंध पर। जिसका जैसा संबंध होता है, संबंध से एक अभिमान पैदा होता है। ब्रह्मा का कृष्ण के साथ में क्या संबंध है? अधिक से अधिक ममता रही प्रभु, सनक सनंदन सनातन जी का ये जो भगवान के प्रति भजन कुछ है, सनक सनंदन सनातन इत्यादि जो, इनमें ममता नहीं है, ये विभु वस्तु है। या विभु वस्तु का एकमात्र प्रभाव है वहां पर ममता नहीं होती। ममता कैसे होती है? तुम्हारे पिताजी कौन है? देखो ये संबंध है या अभिमान। तुम लोगों से किसी को पिता कहो? कहने से भी जो पिता के प्रति भाव है जन्म से, वो भाव ऐसे नहीं आएगा। इसलिए जो यशोदा माँ का जो पुत्र भाव है उनसे जन्मे हैं, ये एक प्रकार का। और जो वहां पर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं या स्त्रियां हैं, उनके गर्भ से नहीं निकले हैं, किंतु कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक प्रीति करते हैं, ये बात्सल्य भाव है। किंतु यशोदा का जैसे गर्भ से निकल करके उनका ये संबंध है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी मैया, और लोगों के प्रति होगी, इसी को दिखलाने के लिए एक वर्ष के लिए उनके पुत्र और बछड़े हुए। तभी जब कृष्ण कार्य को वो खत्म हो गया तो वो भाव भी खत्म हो गया। इसलिए यशोदा जी का ये जो बात्सल्य है, ये संबंध जनित है, ये बहुत ही ऊंचा है। कृष्ण यादव कुल में जन्म लिया, उनके पुत्र हुए कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध पद्मन जी, अनिरुद्ध जन्म के नाती। ये जो भाव है, ये कृष्ण मेरे हैं, ये कभी लुप्त हो सकता है? क्योंकि वो ऐसा मालूम होता है कि शरीर से निकले हुए ये संबंध है। इस संबंध को पुष्ट करने के लिए वैसा संबंध हो, कोई देहगत संबंध चाहिए, जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ ये संबंध देहगत। गोपियों से क्या है, इससे भी बड़ा देहगत सही है। जो वो गोप है, मैं भी गोपी हूं, उसी कुल में है। साथ में काम भाव, प्रेम भाव, जो यशोदा जी से भी अधिक ऊपर बढ़ जाता है। ये संबंध तो ही है, साथ साथ में एक प्रीति का भाव। ये भाव जो उनमें, जिनमें ब्राह्मणी ये नहीं गया, और गोपियों का ये अभिमान ही है, उनका अभिमान है जमे कृष्ण के हूं। इसलिए कहते हैं तो तुम गुतस्यापि पादमूलम भयम दशार्थम प्राप्त। ये कह रही हैं कैसे में जो जिस गोपियों की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मणी हूं, किंतु हम तो चाहते हैं कि गोपियां, गोपियों की चरण की धूली या कुमकुम हम अपने सिर पर लगा करके हमारे जीवन किताब में उनकी सेवा करेंगे। हम ये कह रहे हैं इसलिए अब हमको अपने चरणों से अलग घर में मत भेज, उनसे अब हमारा, उन्होंने तो हमको क्या कर दिया, भाई ने भी, पति ने भी, मैया ने भी, सास ने भी, ससुर ने भी, सब छोड़ दिया। जो आएगी तब घर में नहीं घुसने देंगे, तो अब हम कहां जाएंगे? नहीं विप्रजात्याभिमाने सत्येव कोऽपि जनो वक्तुं शक्नोति अतो अस्मद् वाक्येन एव निश्चयता न अस्ति अस्माकं जातिभिमानं इति भावः। जब हम उनकी चरणों की धूलि अपने सिर पर लेना चाहती हैं, तो इसका मतलब जब आप ब्राह्मणी हम नहीं रहे, हम ब्राह्मणी विमान भी छोड़ देंगे। छोड़ देंगे कैसे? जन्म दोष जाति में हुआ है और ब्राह्मणों के साथ में शादी हुई है, इस अभिमान को कैसे छोड़ सकती हैं? ननु फिर यदि कहते हैं गोप्यश्च मम गोप्य एव दास्यः प्रियश्च समुचिता भवन्ति तास्य बहु वर्तते तेषां सत्यम पर्पताम विराजिताम या नाम अपि त्वं ब्रह्मणी दासी कर्तम बंधोभ्यो बीस जरेगी। अच्छा तो तुम ऐसा करो, ये ब्राह्मणियों की ही दासी बनो, गोपियों की दासी बनने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यदि ऐसा कहते हैं तभी कथम त्याग, तो ये भी कोई लज्जा की बात नहीं होगी, किंतु गोपियों की दासी तुम बनेगी, ये तो बड़ी भारी लज्जा की बात है। और तो कहते हैं कि ना एवं जामु वृंदावन एवं बन देवता इव बत्तीस श्याम में है। अच्छा ठीक है, आप यदि कहते हैं तो हम वृंदावन नहीं जाएंगे, मथुरा भी नहीं जाएंगे, मथुरा में उनके पति लोग हैं और वृंदावन में गोप गोपी ये सब समाज है, लोग कहेंगे अरे देखो तो ब्राह्मणियों को घर में ले आया। अच्छा ठीक है, हम वन देवी की भांति इस वन में ही रहेंगे, जब आएंगे आपका दर्शन करें। ओह कृष्ण कहते हैं अभी आप लोगों का जो ब्राह्मणी का ये गंध है ना, जब तक गंध नहीं जाएगा तब तक वो ऐसा संभव पर नहीं है। ऐसा ही बात है, यदि कोई साधक ऐसा जिसे ब्राह्मण कुल में है वो भी, जैसे कि दंडकारण्य में 7000 ऋषि लोग कृष्ण को पाने के लिए गोपी हो करके भाव लेकर के भजन कर रहे थे, वो उस रूप में नहीं पा सकते थे, तो पुरुष। दूसरी बात अभी ब्राह्मण और तपस्वी का भाव, इसलिए योग माया की कृपा से उन लोगों का जन्म हुआ है प्रकट ब्रज में और वहां पर गोपियों के गर्भ से उन्होंने गोपी के कुल में जन्म लिया और गोपियों का संग करने से, गोपियों का दर्शन और कृष्ण का दर्शन करने से गोपियों का जो भाव होता है ठीक उनके अंदर गया है और जो कुछ कुछ गड़बड़ी भी थी वो भी दूर। वहीं तो दूरे स्थित और हम नहीं जाएंगे वृंदावन, इसीलिए वो कहते हैं प्राप्ता वयम तुलसी दान पदावशिष्टम केशैर निदेढ़ अति लंघ समस्त बंधु। हम तो बंधुओं को छोड़कर के वृंदावन में ही रहेंगे, वन में, घर में, नगर में, वृंदावन के घर में भी, नंदगोप जी के गोकुल के घर में नहीं जाएंगे, हम वन में ही रहेंगे। और वो गोपियां जदा कदा यहां आएंगी उनकी पद की धूली को हम लोग अपने सिर पर चढ़ा करके अपने को कृतार्थ मान लेंगे। दूर स्थित पदावशिष्टम जत पदार्थ तदा अश्लिष्ट पेशी नंग पद संसर्ग हुई अवशिष्टम पर्यंक मध्य विशिष्ट तुलसी दाम। अथवा जब वृंदावन में आएंगे कृष्ण सूर्य पूजा के बहाने अथवा गोविंदन गोवर्धन के निकुंज वनों में जब गोपियों से मिलित होंगे तब तो उनके अंगराग जो उस सैया पर पड़ जाएगा उसको ही हम लोग उठा करके अपने सीखना और समस्तान में हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम और कुछ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि गोपी जैसे आप हमें प्रिया बना लें, हम नहीं चाहते, हम इसके युग ही नहीं है। तुलसी दाम तत्दासी, जैसे तुलसी को आपने चरण में चरणारविंद में रखा, बिना तुलसी के भगवान की सेवा नहीं होती, ऐसे आपके चरणों की तुलसी बस उसी को जो गोपियों ने जो कृष्ण के चरणों में है और उभे कुंकुम लगेगी उसी को हम अपने सिर पर धारण करके कृतार्थ मान लेंगे इत्यादि भाव। कर ही बहुत बंधुवत किंग करिष्यति, तब आपके बंधु लोग हैं वो क्या करेंगे, बंधु माने माता पिता भाई बंधु पति इत्यादि क्या करेंगे, तत्र अभी लंग गए थे हमें छोड़ देना। तो इसमें विभो भी कहा है ऐश्वर्य की बात है, कृष्ण ने उनको ग्रहण नहीं किया ब्राह्मणी अभिमान इत्यादि के वजह से। अब देखो इसमें क्या करते हैं,
जो भाव का उदाहरण दिया ना, गोपी उदाहरण
ठीक
मैवन विभो विभो भवान गदितम विशंसम न अर्हति
आपको ऐसा अनुचित बात कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। संत्यज्य सर्व विषयान तव पादम, हम तो सब विषयों को छोड़ करके यहां भक्त्या भजस्व, हम जैसे भक्ति कर रहे हैं आप भी वैसा भजन करके हमारी सेवा करें। दुर्वग्रह मा, दुराग्रह मत कीजिए, हट मत कीजिए, हमें छोड़िए मत। देवो जथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षु, मुक्ति के लिए जो लोग आदि पुरुष की भजन करते हैं, जैसे देव पुरुष भी उनको नहीं छोड़ते हैं, ऐसा आप मत छोड़। आसमान हमें आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, घर लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। हम लोगों को तो उपदेश दे रहे हैं धर्म की, ये धर्म करो, और आप पाप राशि क्यों बटोर रहे हैं, इतना पाप क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए पाप मत कीजिए, पाप मत बटोरिए। वैभव इसलिए पाप मत करिए, इसलिए निषेध कर रही है गोपियां ऐसे हिंदी दिख रहा है। वहां पर तो मई वह हाथ जोड़ करके कह रही हैं, और यहां पर इस तरह से हाथ को लेकर के पकड़ करके ऐसा आपका करना अनुचित है। स्वाधिकार यहां पर कह रही है, निशंसम घातकम साक्षात मारकम, साक्षात मारने को ही घातक कहते हैं, निशंस भाव कर, जैसे बहेलिया निशंस होकर के चिड़ियों को पक्षियों को सबको मार, ऐसे आप में दया का नाम निशंस जथा गदित, जैसे वो लोग हैं वैसे आप हैं, ऐसे आपको भगवान प्रति पुरुषम धार्मिकत्व ख्याति। अरे आपका तो खूब चारों तरफ में प्रसिद्धि है, जहां बड़े धार्मिक, और ये अधार्मिक को जैसे बातें क्यों कर रहे हैं। अधार्मिक किसको कहते हैं, वेद शास्त्रों के प्रतिकूल चलने वाले को अधार्मिक कहते हैं। तो आप वेद शास्त्रों के प्रतिकूल चल रहे हैं जो, और हमें शिक्षा दे रहे हैं ये वेद के अनुसार में चलो, और आप वेद के बातों को उल्लंघन कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वाधिकार के साथ में कुछ रुष्ट होकर के ये बोल रही है, और वो लोग रुष्ट नहीं होकर के कैसे, श्रद्धा से हाथ जोड़ करके और उनसे प्रार्थना कर रहे। नंदस्य पुत्र सन्नार्हति, आप कौन हैं, आप नंद के पुत्र हैं, नंद बाबा यशोदा जी बड़ी धार्मिक है, वो तो दूसरों का दुख देते ही द्रवित हो जाती है, तो आपको पुत्र का, उनके पुत्र का, पुत्र होने का भी अधिकार आपको नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं
पिता का गुण नहीं है,
आपने पिता का गुण माता का गुण जो होना चाहिए नहीं है, इसलिए तो आप अधार्मिक ही जैसे ये बातें कर रहे हैं। नंदस्य पुत्र न अर्हति अनंतु पशुपुरुषम माया मनुष्यम अर्णक वृत्ति को ब्रह्म अर्हतु नाम भाव निशंस, जिसमें मनुष्य जैसा कोई गुण न होकर के अत्यंत कठोर निर्दय निष्ठ मारने वाला हत्या करने वाला होता है। नंद बाबा के ठीक आपके, आपने ये प्रतिकूल आचरण दिखा जा रहा है, जब हम यहां से जाएंगे तो क्या होगा, एक नहीं कितनी कोटि कोटि गोपियां मर जाएंगी। अभी ये सबका पाप किस पर चढ़ेगा, आप पर चढ़ेगा, ये इनको डर नहीं दिखा सकी,
ब्राह्मण
ब्राह्मण पत्नी, और ये इनको ये डर दिखला रही है। घातक क्रूर, अमर कोश में भी ऐसा कहा है, घातक कहते हैं क्रूर को, त्वया कोटि संख्यो अपि अस्मान प्रति बाक सराश, बाप के सर से बाप के बाण से आप लाखों कोटि गोपियों की हत्या भी करने जा रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं, ऐसा धार्मिक कार्य नहीं आपको करना चाहिए। कोई कैसे क्यों कहेगा, जब पृथ्वी की अधिकता अधिक है तब ये कह सकता है, अन्यथा
नहीं जा
सकता।
अतः जैसे बहेलिया बाण के द्वारा हिरणियों को संहार कर देता है, यथा भुनैव शरीराणि परित्यज्य जमपुरम सर्वा एव वयम जाम न तु तदुपदिष्टम गोष्ठम। हम तो कभी भी घर में नहीं जाएंगे, हम बल्कि जाएंगे कहां? हम तो सतकोटि जितनी स्त्रियां हैं गोपियां हैं आपके वध करने के बाद में हम सभी जमपुर में जाएंगे, उस घर में जहां आग लगी हुई है उस घर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ही हमको मार डालेंगे, हम चले जाएंगे जमपुर में। न तो तद उपस्थित, आपने कहा कि गोष्ठ में लौट जाओ, हम गोष्ठ में लौटने वाली नहीं है, कभी कदापि नहीं लौट सकती। परंतु तुम सतकोटि गोपियों के वध का पापी होगा यदि हम गृहित्वा स्वयं एवं गोष्ठम जाती और तुम
गोष्ठ में जाओ,
इतने लाखों कोटि गोपियों को मारने का पाप लेकर के तुम गोष्ठ में लौट जाओ, हम नहीं जाएंगे। स्त्री बधानो चेत जिघृष तरही सर्व विषयान तत्वातौपाद मूलम भक्त्या श्री वती स्मान भजस्व। स्त्री बधान चेत जिघृष, यदि तुम स्त्री बध से यदि पीड़ित नहीं होते तो यह सब करना पड़ेगा, स्त्री का वध करने, और जब भी तुम उसे लज्जा करते हो घृणा है जैसे नहीं स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, तब तरही सर्व विषयांतक, तो हम सब विषयों को छोड़ करके आए, आप सब विषय को छोड़ दीजिए, जैसे हम ये जथा माम पर हमने जैसे सब कुछ छोड़ दिया, अभी सब कुछ छोड़ करके भक्त्या भजस्व, जैसे हम भक्त के रूप में है तो आपको भगवान के रूप में वैसे ही भजना चाहिए। तो उपाद गुलम भक्त्या भक्ता
सेवितस्मान
भजस, हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी हमारा भजन कीजिए। भजन का मतलब क्या, जिस भावना से हम आपके पास हैं उसी भावना से हमारी मनोकामना का पूर्ण करना ही आपके लिए उचित है। अत्र अन्य विषयानि अन्य विषय नित्यानि तत्व सर्व विषयान तु उक्त्या भगवत असंग संगो ही विषयो न भवती थी ध्वनित मनोभोग कामिन्य किम स्वसत पतिभ्यो भवती नाम कामो नोपसमय ततस्तान परित्यज्य माम एव भजस्व। तुम क्या पति इत्यादि को सब छोड़कर को आई है इसलिए कह रही है, इन्हें कह रही है इसे हमारा भजन कीजिए। तत्राहु तो गोपियां दुरवग्रह दुराग्रही हठता छोड़ो अवग्रहो वृष्टि प्रतिबंधे इति पाणिनि व्याकरण का। जिस प्रकार से चातकी का स्वाति जल नक्षत्र के साथ में संबंध होता है, वो ऊपर में मुख करके रहेगी, यदि ऊपर से वज्र गिर जाएगा भी तो कोई परवाह नहीं, मर जाएगी, और नहीं तो पानी पिएगी तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगी। इसका अतिरिक्त किसी भी स्थिति में दूसरे मेघ का भी पानी, तालाब का, सरोवर का, गंगा का, जमुना का, मानसरोवर का, किसी जगह का पानी नहीं पिएंगे तो बस स्वाति। वैसे स्वाति नक्षत्र जैसे आप हम चात के रूप में हम आपके अतिरिक्त छोड़ करके और किसी का भी जलपान नहीं करेंगे, अर्थात प्रीति नहीं करेंगे। कृष्णा मेघो बंधुत्व, बस आप ही के साथ में हमारा बंधुत्व है। यदि दैववशता आप विष की वर्षा कर रहे हैं हमें मारने के लिए इन बातों के द्वारा वाणियों के द्वारा अवग्रहत्वात् सलिलं न चेत वर्षसि तरही मां वर्ष। यदि स्वाति नक्षत्र पाषा नहीं करता है चातकियों के लिए तो न बरसे, आप भी कृपा करके अपनी वाणी हमारे प्रति मधुर बरसाएं अथवा न बरसाएं। तदृष्ट विषम में एवं पीतवा, हम विष में पी करके ही वयम मृयामहे, हम तो मर जाएंगे। न तो निकट स्थानानां निकट के स्थान में हरादनी इत्यादि का पानी नहीं पिएंगी, अर्थात पति इत्यादि के पास में हम नहीं जाएंगे। अतोष्मान मात त्यज, इसलिए आप हमको मत छोड़िए। यथात्मान कृतज्ञत्वं दधासी इति भाव, आप अकृतज्ञ मत होइए। ननुच सत्यम, चातक मेघ के बिना दूसरी जगह का पानी नहीं पीता, यह बात ठीक है। भले ही वो चातकी मर जाए, जीवंतु या मृतम वो मेघस्य न कोपी हानि, मैं की क्या है, क्या हानि है। यदि चातक लाख चातक मर जाए या जीवित रहे तो उसमें मेघ का क्या बनता बिगड़ता है, वो तो अपनी रीति से चलेगा। वैसे हम भी अपनी रीति से चलेंगे, जब यह आशा आप कहते हैं तो चेत सत्यम मत्वम बात ठीक है आप कहते हैं, किंतु जड़ तो मेघ तो जड़ होता, आप जड़ है, आपको तो बुझने की शक्ति है, सामर्थ्य है, नहीं हो। किंतु विदग्ध चूड़ामणि नारायण समूह नारायण मेव बर्तते, आप तो अरे नारायण के समय है ना, इसलिए हम तो नहीं जानती, हमने सुना है कहां, कहते हैं इत्यादि के मुख से, पूर्णिमा के मुख से, इसलिए कहते हैं कि देव देव उनको कहा इसलिए, और बीबी भी इसीलिए कहा ना, ये भाव, इसलिए वो उनका बीबू है, अपने स्वाभाविक रीति से कहा, या दूसरे से सुन करके इन पर चतुराई से कुछ वाक्य भंगी से ये ऐसा कह रहे हैं। देवती मुमुक्षा तद उपासनार्थम सर्विशां तत्व, जैसे मुमुक्षु लोग सब कुछ छोड़ करके स्त्री पुरुष धन जन पुत्र परिवार सब देह दैहिक आसक्ति को छोड़ करके मुक्ति के लिए भजन करते हैं, सर्विशां तत्व तद अभिष्टो विष्टोप पादनया भक्त बस्या, उनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए भक्ति के बस स्वयं वो प्रभु हरि तदर्थम उनको उस अर्थ की अर्थ को प्रदान करता, तत् मुक्ति भी उनको दे देता है, ये उनका भजन। पपित्वम कर्तम, और तुम क्यों नहीं हमारा भजन करेगा, क्यों नहीं करते, ये उससे पूछे। इसलिए यहां पर विभो और देव शब्द का प्रयोग किया है, वो कुछ रुष्ट होकर के उलाहना के रूप में उनको कह रहे हैं। तो फल बेचने के लिए जाती ब्रज से आती, उन गोप गोपियों की बातें, कृष्ण की बातें, जा करके इन लोगों से भी फल बेचने के लिए जाते इनके पास में, तो वो सब बातें की उनकी चर्चा होती, वो सब ऐसी होती है कि यहाँ की बात वहां वहां की बात चारों तरफ में वो बतला, स्त्रियां कभी भी चुप नहीं बैठेंगी, कभी नहीं चुप बैठ, जब दो जगह रहें एक जगह हम मिलेंगी तो जरूर बातचीत होगी, और उस बात में उस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, पति क्या कर रहा है, उनका पुत्र क्या कर रहा है, ये सब बातें जरूर होंगी ही। इसलिए उनको पता लग गया जे कृष्ण ऐसे हैं, गोपियां ऐसी हैं, उनके प्रति ऐसा भाव है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लोग पूर्व राग के रूप में हुआ, किंतु अभी बहुत कुछ अभी उनमें कमी है, इसलिए कृष्ण ने उस समय उनको नहीं दिया। जन्मांतर में यदि इनका भाव यदि जिनका इनमें से पुष्ट होगा, वो योग माया के द्वारा वहां पर जन्म लेकर के फिर वहां पर गोपी गर्भ से जन्म लेकर के भाव की सिद्धि होने पर गर्गाचार्य जैसे हैं, संबिल कौंडिल्य ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, पूर्णिमा जी हैं, गांधी मुखी हैं, ये सब लोग उनके घरों में आते जाते हैं और सब समय उनका संपर्क होता है। इसलिए जिस घर में धार्मिक लोग होते हैं उनके बच्चे भी धार्मिक होते हैं, और सुनते 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 ये सब बातें भी याद आ जाती हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। वेद की जैसे हम लोग जब मठ में आए तभी से सुना ओम विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या,
देवी वो चक्षुरातम ये अपने आप सर्वधर्मान प्रत्यजमा में ये अब याद करने की जरूरत नहीं रही, सब समय होती रही।
जो गोपुत्नी ने जन्म लेता पुत्नी देर कष्ट पुत्री देर कष्ट
के
जो
गोपुत्नी ना ना
थोड़ा की कर जान लो
हो रही तो जान लो
उधर सारे तो नारद
দ্বিজ পুত্রী ওখানে নারদ যাবে, ওখানে নারদ যাবে, ঋষিরা যাবে, ওরা বেদ পাঠ করছে, এরা ঘরে বসে কিছু না কিছু তো শুনবে, কিছু না কিছু যাবে। আমারে দেবতা হ্যাঁ ব্রজ কে গোবিন্দ জি কৃষ্ণ মদন মোহন গোবিন্দ জি ও গোপীনাথ একই ব্যক্তি কা তিন নাম হ্যাঁ বঙ্গারী জি এক নাম আর এক বিশাখা কে পিতাজি আর এক কুসুম কে পতি তিন হো গেল একই ব্যক্তি এসে কৃষ্ণ এক হি হ্যাঁ जब वो अपने रूप से गुणों से अपने भावों से लोगों के चित्त को आकर्षण करते हैं, कृष्ण धातु कृष्ण माने आकर्षण, न माने होता है आनंद, आकर्षण करके आनंद देते हैं, संबंध स्थापन कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं कृष्ण अथवा मदन मोहन, मोहन करते हैं। किसी प्रकार से किसी के चित्त के आकृष्ट करने से संबंध होता है, ऐसे संबंध नहीं होगा तो कृष्ण अपने गुरु से ऐसा आकर्षण कर लेते हैं जो जीवों के चित्त को चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं, ये मदन मोहन। अभी चित्त चुराया किंतु जब चित्त चुराने के बाद में उनकी सेवा आरंभ हो जाएगी तब उनको कहते हैं मदन गोविंद। जैसे वृंदावन में कृष्ण के बांसुरी बजाने पर कोटि कोटि गोपियां अलक्षित रूप में एक दूसरे से और वहां पर उपस्थित हुई, रास हुआ। रास माने क्या? सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की लीला ये रास लीला है, जिसमें सभी प्रेम की जितनी भी लीलाएं हैं सब उसमें अंतर्भुक्त है, उसी के अंदर में है, इसे बढ़कर के और कोई लीला नहीं। जिसमें सबसे अधिक गोपियों का उत्कर्ष दिखलाया गया, जो गोपियों से श्रेष्ठ और कृष्ण का कोई प्यारी नहीं या प्यारा नहीं, इस चीज को दिखलाया। और जब उनकी सेवा आरंभ हुई तो उन्हीं का नाम हो गया गोविंद। और सेवा करने से कृष्ण का भी प्रेम इनको मिला, इनका भी प्रेम उन पर बढ़ा। जब प्रेम की अंतिम परिसमाप्ति एकदम अंतिम सीमा तक पहुंचा है तो ये गोपीनाथ हो जाते हैं, गोपियों के प्राण प्रियतम हो जाते हैं, उनका नाम तब होता है गोपीनाथ। गदाधर जी राधा है स्वयं, ये गदाधर जी कौन है? स्वयं राधिका जी हैं। तो महाप्रभु जो राधिका भाव लेकर के आए तो फिर ये
अच्छे बोला इसी जाएगा जी। राधा रानी को भाव गौरंग महाप्रभु ले आया तो राधा रानी को तब दक्षिण भाव पड़ा रहा ना, तो गदाधर उसी दक्षिण भाव को लेते
गत पुरुषोत्तम पाठ बोले
आया समझ में नहीं क्या
क्या कि महाप्रभु राधा का भाव लेकर आए थे फिर गदाधर पंडित क्यों आए राधा के रूप में?
ये तो कहा ना अभी बतलाया, राधा जी प्रेम की अंतिम सीमा तक है, कभी कभी मान करती हैं और कृष्ण उनको मनाते हैं, इसको कहते हैं बाम्य भाव। और दक्षिण भाव कहते हैं कृष्ण के सदा अनुकूल रह करके जैसा करते हैं वैसे चल, जो कुछ कृष्ण कहें उसको मान करते वैसा ही चल, उसमें मान टान नहीं हो। यदि कृष्ण ने कभी कभी कृष्ण को कुछ बिगड़ भी गए तो ये रो देंगे बस, और अधिक कुछ नहीं करते।
जबकि राधिका जी में मान और दक्षिण दोनों भाव है परम सीमा पर, तो उनका भाव ले लिया ना, राधिका जी का अपना भाव है वाम भाव, तो वाम भाव महाप्रभु जी ने ले लिया और गौरांग रूप में आए, तो राधा जी में केवल बच रहा दक्षिण भाव। इसलिए गदाधर जी न तो बिगड़ते हैं, न मान करते हैं, न कुछ करते हैं, किंतु है राधा जी, है उनमें मानसक, प्रेम की अंतिम सीमा तक है, किंतु प्रकाश नहीं कर रहे। ये गदाधर पंडित जी क्यों नहीं प्रकाश करते? इसलिए नहीं प्रकाश करते वाम भाव इत्यादि, कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, इन्होंने हमारा भाव हमसे उधार लेकर के ऋण लेकर के मंगनी मांगा है और ले आए, अब देखते कि हमारे भाव का व्यवहार ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ये वाच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जैसे कहीं गड़बड़ न करे, यदि गड़बड़ करेंगे ना, जैसे कि बरहा पीड़म श्लोक उच्चारण किया महाप्रभु
शुक्लाग्मय ब्रह्मचर्य
घर में, तो उनमें कुछ गड़बड़ी हुई, भाव ऐसा नहीं आया, तो भीतर से रोते हुए बरहा पीड़म ऐसे मधुर भाव से उच्चारण किया है, जो महाप्रभु ने कहा जी घर में कौन है, कौन रो रहा है और कौन उच्चारण कर रहा है, अतः तो उनमें कमी हो गई उस भाव में, क्योंकि कभी भाव प्रकाश वो नहीं करना चाहते थे, राय रमानंद से मिलने के बाद में वो भाव प्रकाश करना था, इसलिए प्रारंभ में कैसे करें, तो उनकी त्रुटि इनसे देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने इस भाव को प्रकाश किया। जैसे नाम सुना है बैजू बावरा,
तानसेन बिजू
बावरा, तानसेन और बैजू बावरा, ये दोनों शिष्य हैं, इनके गुरु हैं
हरिदास,
हरिदास वृंदावन वाले हरिदास, इतना सुंदर गाते थे सब लोग, जब इन्हीं दोनों को इतना बड़ा ऊंचा समझते हैं तो और बैजू बावरा तानसेन से बहुत अधिक श्रेष्ठ था। एक समय की बात है, बैजू बावरा इनके पास में आए और कीर्तन करना लगा दिल्ली की गलियों में, उसमें कीर्तन करना मना था, गान करना मना था, कोई करेगा तो उसका प्राण ले लिया जाए, तो यह करके करने लगे, तो लोगों ने निषेध किया, निषेध किस लिए, तो यदि आपको तानसेन हरा देगा तो आपका प्राण ले लेगा, कहने अच्छा उसे आने दो, तो बादशाह ने इनको दरबार में बुलाया जहां पर तानसेन भी था, उन्होंने कहा कि तब दोनों की बराबरी हो, देखें जो कौन सुंदर संगीत करता है, जो हार जाएगा, यदि आप हार गए तो आपका प्राण लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये हार जाएंगे तो इनका प्राण हम ले लेंगे, तो ये यहाँ नहीं, आप निर्णय नहीं करेंगे, कोई सभासद नहीं, ये वन के जंगल के पशु पक्षी निर्णय करेंगे, वहां पर होगा, तो सब लोगों को लेकर के और वन में गए और वहां पर तानसेन से कहा जैसे उसने गाया, और इसके बाद में इन्होंने बीणा लेकर के जब गाना आरंभ किया तो हिरणियां सब छुप करके वहां पर चली आई और पशु पक्षी आ गए, उन्होंने अपने गले की माला लेकर के और उसके गले में डाल दिया हिरणी के, इसके बाद गान समाप्त कर दिया तो वो चली गई, उन्होंने कहा उन हिरणियों को बुला करके और उनका माला हमारा लौटा करके दे दो तो तुम हमसे श्रेष्ठ हो, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, उनका भी तो अपने स्वभाव से आ गई थी, कोई ऐसी बात नहीं आई, फिर उन्होंने बिना लिया और फिर वो बजाया ऐसे, ये बैजू बावरा है ना। एक दिन अकबर बादशाह इनके पास में गया तानसेन को लेकर के कुछ सुनने के लिए, उन्होंने कहा हम अपना संगीत भगवान को सुनाते हैं और कोई क्यों नहीं इन दोनों के लिए, तो उनका जैसे बादशाह आया है और उनको गान नहीं सुनाया गया, तो दूसरे दिन वो अकेले आकर के एक राग रागनी बिना पर लेकर के बजाने, किंतु उसमें वो भाव नहीं आया जो आना चाहिए, बस उसके हाथ से कहा कि इतना दिन तुमको पढ़ाया और ये क्या तुमको ये ज्ञान नहीं, ठीक से बजा नहीं सकते और गा नहीं सकते, बस बिना लेकर के, और सब ऐसा सुंदर गान किया जो वर्षा हो गया, जिसको मल्लार राग कहते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि उन्होंने एक गलती कर करके जानबूझ करके हो या जैसे गलती हुई, तो उन्होंने अपने
विद्या का पूरा प्रयोग कर लिया। ऐसे ही इसकी उपमा दे रहा था, किस चीज की बतला रहा
था,
वही गदा रहा। पंडित जी वहां पर हैं, उन्होंने एक दिन कहा देखो मैं तुमको एक चीज दूंगा लेगा।
महाप्रभु ने कहा,
महाप्रभु तो उन्होंने कहा जैसे आप चीज कोई देंगे और मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, उन्होंने बालू हटाना आरंभ किया कोटा गोपीनाथ में, और हट जहां पर आज पन्नाट मंदिर बन गया उसी के अंदर में कहीं, और उसको बड़े प्रेम के साथ में हटाना आरंभ। हटाते हटाते सिर दिखाई पड़ा, और भी हटाना, हटाता हटाते तो श्री गोपीनाथ जी का भी अब वो करते हैं उसकी पूजा करना। किसने दिया, महाप्रभु को बहुत सी लीला करनी है, उनको वृंदावन जाना है, और गदाधर समय छोड़ेगा नहीं, और गदाधर रहेगा तो हमारी हमको संकोच रहेगा, क्यों ये परीक्षा यदि मास्टर साथ में है ना तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए गदाधर जी को वहां पर छोड़ने के लिए उनको दे दिया। ये है गोपीनाथ। इसके बाद में एक दिन वहीं पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी बंगाल से आए, और सुंदर सुंदर कपड़े गोपीनाथ जी के लिए, और कुछ अलंकार, कुछ चावल, कुछ और चीजें वहां से लेके आए।